ओम शांति। आदरणीय लक्ष्मी दीदी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप पिछले 32 इयर्स से ईश्वरीय ज्ञान में हैं। आपको ये ईश्वरीय ज्ञान जयपुर से ही प्राप्त हुआ। आपने अनेक विषयों पर जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, वैल्यू एजुकेशन, लाइफ स्किल आदि पर आपके अनेक कंपनीज व शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम होते रहते हैं। आप बहुत ही सरल, सौम्य व निरंकारी हैं। आप सदा ही बाबा की हर सेवा में सदा हाजी का पाठ पक्का कर तत्पर रहते हैं। ऐसे बाबा की विशेष रतन दीदी जी से हम दुआओं का आधार विषय पर लाभान्वित होंगे। आदरणीय लक्ष्मी दीदी,
ओम शांति। आप थक तो नहीं गए? एक बार खड़े हो जाओ, नहीं तो दुआएं लेते लेते सो जाओगे। अपने हाथ ऊपर कर लो एक बार, ताकि आप रिलैक्स हो जाओगे, फिर आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। है बाबा को देखो सामने, बाबा कितनी दुआएं दे रहे हैं। ठीक है, ओके, बैठ जाओ। अभी आप सभी ने जयंती बहन की क्लास सुनी कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है, और आज आपका विषय है कि ब्राह्मण जीवन का आधार है दुआएं। बाबा की बहुत सी मुरलियां चल चुकी हैं, और बाबा ने इस बार हम सभी को जो है होमवर्क जो दिया है वो भी यही दिया है कि बच्चे आपसे कुछ भी ना हो, कोई धारणा अगर आपसे नहीं होती है, लेकिन आप एक काम जरूर करें सुबह से रात तक, और वो सबसे सहज कार्य बाबा ने बताया, दुआएं दो और दुआएं लो। सबसे सहज है। बाबा ने कहा बच्चे आपसे गुण धारण नहीं होते, शक्तियां धारण नहीं होती, आपको उसमें मेहनत लगती है, तो कोई बात नहीं है, आप सबसे सहज काम यही करो कि मुझे सवेरे से रात तक सबको दुआएं देनी है, और दुआएं देनी है और साथ में लेनी भी है। आपको सबको पता है कि हम सभी ब्राह्मण बच्चों के चार सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और बाबा ने कहा है कि बच्चे ये चारों ही सब्जेक्ट आपके अंदर बल के रूप में जमा हो, जैसे ज्ञान का बल, योग का बल, धारणा का बल, सेवा का बल, और इन चारों ही सब्जेक्ट का जो बेस है, आधार है, वो है दुआओं का बल। सबसे बड़ा बल है दुआएं, और दुआएं वो शक्ति है जो कई बार हम सोचते हैं, बाबा हमें कहता है कि बच्चे आप खूब योग करो तो आपके विकर्म विनाश होंगे, आपके विघ्न समाप्त होंगे, और बाबा ने साथ में ये भी कहा है कि अच्छा बच्चे अगर योग नहीं भी लग रहा है तो आप दुआएं दो। तो विघ्नों को पार करने का आधार है दुआएं। हमारे आगे कोई भी प्रकार का विघ्न, चाहे कैसा भी हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, कोई भी विघ्न हो, लेकिन अगर हमें उसे सहज पार करना है तो उसका आधार है दुआएं। दुआएं वो शक्ति है जो हमें पुरुषार्थ को हमारे सहज करने वाली है। दुआएं वो शक्ति है जो सहज ही हमारे संस्कारों को बदलने वाली है। सहज दुआओं में वो पावर है, जैसे आपने देखा होगा कि साइंस में सबसे तेज गति किसकी है? रॉकेट की। लेकिन रॉकेट से भी तेज जो गति है वो दुआओं की है। बाबा कई बार कहते बच्चे जो कार्य बोल से सिद्ध नहीं होता है, जो कार्य आपका समझाने से सिद्ध नहीं होता है, तो उसकी जगह आप क्या करो, आप सामने वाले को शुभ भावना और शुभ कामना दो। तो दुआएं क्या चीज है? शुभ भाव, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, ये सब क्या है, ये सब दुआएं। तो जितना हम दूसरों को शुभ भावनाएं देते हैं, जितनी हम शुभ कामनाएं देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है, दुआओं को ही कहते हैं पुण्य। आज हम जितने भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, उसका भी आधार क्या है? भगवान की दुआएं। कि भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी और जैसे हम उसकी नजर हमारी विशेषताओं पर, हमारे गुणों पर पड़ी और बाबा ने हमें कोटों में से चुनकर के अपना बना लिया, ये क्या है? ये दुआएं है ना। और दुआएं किस किस की चाहिए हमें? सबसे पहले स्वयं की दुआएं, फिर भगवान की दुआएं, तीसरा ब्राह्मण परिवार की दुआएं, चौथा हमारा जो लौकिक परिवार है उसकी भी दुआएं, संबंध संपर्क में हम आते हैं उनकी भी दुआएं, सबकी दुआएं चाहिए। अब आप सोचोगे खुद की खुद पर दुआएं क्या है? आपकी खुद पर दुआ है? किस किस की खुद पर दुआ है? स्वयं की स्वयं पर दुआ क्या है? स्वयं की स्वयं पर दुआ वो है कि हम स्वयं को भी, अपने आप को भी पहचाने कि सचमुच जो बाबा ने, अभी जब बाबा आए 15 को और बाबा ने जो मुरली चलाई कि बच्चे आप स्वमान में रहो, अपने स्वमान में रहना, ये स्वयं को दुआएं देना है। ये स्वयं को स्वमान देना या सम्मान देना, ये स्वयं को दुआएं देना है। कई बार हम स्वयं के ऊपर भी ये हो जाते हैं कि मेरा तो पुरुषार्थ ही अच्छा नहीं है, सचमुच मेरे में तो पता नहीं गुण भी है या नहीं, मेरे अंदर विशेषताएं भी है या नहीं, मैं तो जब हम दूसरों को देखते हैं आगे तो लगता है कि ये तो मेरे से बहुत आगे है, पता नहीं मेरे में ये चीज नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है। कई बार हम स्वयं के लिए भी बहुत से व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, लेकिन स्वयं के लिए समर्थ संकल्प चलाना, स्वयं को स्वमान में स्थित करना, स्वयं को सम्मान देना, यह है स्वयं की स्वयं पर दुआएं। स्वयं उस नशे में रहना कि अरे भगवान ने मुझे अपना बनाया है, स्वयं भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है, स्वयं भगवान ने मेरी विशेषता और मेरे गुणों को पहचाना है, तो मैं कितनी महान आत्मा हूँ, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे जैसा दूसरा है कोई भी नहीं है। क्योंकि जितने भी हम बैठे हैं सब में अपनी अपनी विशेषता है, मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। तो मैं कितनी महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, जब हम स्वयं के लिए ये समर्थ संकल्प चलाते हैं, तो ये भी स्वयं को स्वयं पर दुआ देना है, स्वयं की दुआएं ये। फिर है कि बाबा की दुआएं। अब बाबा की दुआएं तो सदा है ही, जैसे माता पिता की दुआएं सदा बच्चों के लिए है, होती है नहीं होती है? हम कहें कि माता पिता बार बार मेरे ऊपर आशीर्वाद करें, नहीं, लेकिन उनकी दुआएं सदा हमारे साथ होती है, उनका हाथ सदा हमारे सिर पर है। तो बाबा की दुआएं है तभी हम बाबा के बने हैं, बाबा की दुआएं हैं तो हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? मधुबन में है? मधुबन में आना ये कितना बड़ा भाग्य है, ऐसा ही समझते हैं ना? हम सब कितने परमा परम भाग्यवान आत्माएं हैं जो बाबा के पास बैठे हैं। तो ये किसकी दुआएं हैं? ये किसकी दुआएं? ये बाबा की दुआएं। हो सकता है कई बार आपको संकल्प आया होगा कि जाऊं या नहीं जाऊं, हो सकता है आप किसी की टिकट पर ही आ गए होंगे, है या नहीं? आए कोई कोई? कौन कौन आए? देखो कोई कोई आए। आप देखो बाबा की कितनी दुआएं आपके ऊपर है या नहीं? और आपको लगा होगा कि वाह मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि मेरा संकल्प नहीं था, मेरा संकल्प कमजोर था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन बाबा मुझे लेकर के आ गया। कौन लेकर आए? बाबा लेकर आए। तो ये बाबा की दुआएं हैं। तो बाबा की दुआएं हमारे पास दिन रात है। अगर ये बाबा की दुआएं नहीं होती तो सचमुच ये ब्राह्मण जीवन ही नहीं होता। तो बाबा की दुआएं, सचमुच मुझे बाबा की दुआएं मिल रही है, उसकी पहचान सदा खुशी, सदा हल्कापन, यह है कि बाबा की दुआएं सचमुच मेरे साथ। बाबा की दुआएं माना सहज आत्मा चल रही है, सहज उड़ रही है, उसको कुछ भी कठिन नहीं लगता, ना धारणा कठिन, कुछ भी नहीं। और जो बाबा कहते बच्चे, बाबा की दुआएं हमें, जितना हम बाबा की दुआओं का अनुभव करते हैं कि सचमुच बाबा मुझे दुआएं दे रहे हैं, तो हमें हमारे जो संकल्प है वो भी बहुत कम चलेंगे। कई बार हमारे बहुत व्यर्थ चलते हैं, वो नहीं चलेंगे। तो सचमुच बाबा की दुआएं हमें क्या बनाती है, हल्का बनाती है, निर्संकल्प बनाती है। तो बाबा की दुआएं मुझे मिल रही है कि उसकी पहचान है। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं लगेगा, कोई भी धारणा कठिन नहीं लगेगी कि क्या करूं कैसे करूं, ये संकल्प में नहीं आएगा। फिर है किसकी दुआएं, इस ब्राह्मण परिवार की दुआएं। तो ब्राह्मण परिवार की दुआएं हम कैसे ले सकते हैं, तो ब्राह्मण परिवार की दुआओं के लिए हमारे जीवन में हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति हमारी भावना बहुत ऊंची हो, ये बाबा का बच्चा, ये बहुत श्रेष्ठ है, इसको भी बाबा ने अपना बनाया है, ये बहुत महान आत्मा है, ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। जितना हम इस ब्राह्मण परिवार के अंदर जब एक दूसरे की श्रेष्ठता को, विशेषताओं को, गुणों को देखते हैं, तो क्या मिलेगी हमें, दुआएं मिलेगी। जितना हम ब्राह्मण परिवार के साथ प्यार से, प्रेम से चलते हैं, तो हमें क्या मिलेंगी, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलेंगी। जितना हम ब्राह्मण परिवार के साथ अपने, जो हम बाबा कहते हैं बच्चे, अपने व्यवहार को बहुत सुंदर रखते, कई बार हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं और ज्ञान की बातें भी बहुत अच्छी हमें लगती है, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं तो आपस में जब हम कोई बात हो जाती है तो कई बार हमें गुस्सा भी आ जाता है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो हमें दुआएं नहीं मिल सकती है। तो ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी हमें तब मिलती है जब हमारा व्यवहार, हमारे कर्म प्रैक्टिकल में मधुर होते हैं। है, आपने वो कहानी सुनी है ना, बड़ी सिंपल सी। एक बार एक व्यक्ति मिठाई की दुकान, एक भिखारी था और उसको बहुत भूख लग रही थी, रोटी तो थी लेकिन खाने के लिए कुछ साथ में सब्जी नहीं थी, तो सामने देखा कि वो गुड़ की दुकान है, तो गया वहां पर और उसको बोला कि भाई आप थोड़ा सा मुझे गुड़ दे दो तो मैं रोटी खा लूं। तो जो वो गुड़ वाला था, बेचने वाला, उसे गुड़ तो नहीं दिया लेकिन खूब सारी उसको बातें सुना दी, कहां से चले आते हैं, ये है वो है। तो भिखारी ने क्या बोला कि अरे भाई गुड़ तो मत दो लेकिन गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। तो आप देखो कि कई बार हम ब्राह्मण बच्चे, हम कोई किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन क्या दें, अपने व्यवहार को अच्छा रखें। हम व्यवहार को जितना सुंदर बना के रखते हैं, जितना हमारा व्यवहार अच्छा होता है, उतनी हमें सामने ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती है। तो ब्राह्मण परिवार में हमारे कर्म बहुत अच्छे हो, नहीं तो फिर बोलने में यही आ जाता है कि हाँ ये ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है, ये ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन इनको तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इनका व्यवहार तो बहुत जल्दी बदल जाता है। इसलिए हमारा व्यवहार जो है, हमारे कर्म ही हमारा व्यवहार, क्योंकि इससे पहले की क्लास आपने सुनी ना कि मेरा कर्म ही मेरी पहचान। तो सचमुच हम ब्राह्मण है ये दिखाई कब देता है, जब हमारा कर्म अच्छे होते हैं, जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, तब समझ में आता है कि सचमुच ये अलौकिक आत्मा है, ये कुछ न्यारी आत्मा है। तो हम ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं तब लेते हैं जब हमारे संस्कार दिव्य होते, जब हमारे संस्कार अलौकिक होते, जो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे संस्कार, क्योंकि हम क्या बनने वाले हैं, सब क्या बनने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं। तो जब हम देवता बनने वाले हैं तो हम सत्युग में देवता बनेंगे, यहाँ बनेंगे, वो देवताई गुण वहां पर होंगे यहाँ पर होंगे या वहीं पर, यही होंगे ना, कौन कौन कहता है यहीं पर होंगे, यही होंगे है? जो हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ये सारी जो हमारी डिग्री है, जो हमारी क्वालिफिकेशन है, ये सत्युग में नहीं लेकिन यहाँ, जब ये यहाँ दिखाई देगी तब हर आत्मा कहेगी सचमुच ये देव आत्मा बनने वाली है। तो हम ब्राह्मणों की भी दुआएं तब ले सकते हैं जब हमारे गुण, हमारी शक्तियां, हमारी मर्यादाएं, ये सब प्रैक्टिकल में दिखाई दे। आप देखो, अगर हम किसी के लिए कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, तो क्या मिला, क्या मिला, ये दुआएं दे। समझो आपके पीछे से कोई कहता है ये आत्मा कितनी अच्छी है, ये क्या मिला, ये सूक्ष्म में दुआ मिल रही है, कोई पीछे से कहता है। आप देखो हमारी दादियां, चाहे बोले ना बोले लेकिन जैसे हमारे सामने आती हैं तो क्या मिलता है हमें, उनकी दृष्टि से हम तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्माएं कैसी हैं, वरदानी आत्माएं हैं, वरदानों से पले हुए, और उनकी दृष्टि में हम सबके लिए क्या है कि सचमुच ये बाबा के बच्चे हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो हमारे दिल से यही दुआएं निकलती हैं कि दादियां सदा रहे, ये निकलती है, ये दादियां हमें मिलती रहे, दादियों को हम देखते रहे। जबकि कोई दादी आपको पर्सनली नहीं कुछ देकर गई है, दादी कोई आपसे बात भी नहीं करके गई है, लेकिन जैसे ही हम दादी को देखते हैं सामने तो हमारे अंदर से क्या निकलती, दुआएं। क्यों निकलती है, क्योंकि दादियों के अंदर बेहद की भावना है। हमें दुआएं कब मिलती है, जब हमारे अंदर इस ब्राह्मण परिवार में भी जब बेहद की भावना है, देने की भावना है, जिसको हम कहते हैं दाता। आप देखो जड़ चित्र जो हमारे बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं, देने वाले, सदा देने वाले, या लेने वाले, देने वाले। तो हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला हमें दुआएं दे तो हम दुआएं दे, कह सकते हैं नहीं, मुझे देना है, मुझे देवता नहीं बनना है, क्या बनना है, मुझे देवता बनना, मुझे देना है, मुझे केवल देने का काम करना। आप देखो अच्छे के साथ तो सभी अच्छा बनते हैं, या नहीं, कोई बहुत मीठा बोलता है लेकिन उसके साथ तो सभी मीठा बोल लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन कोई कड़वा बोले तो है? आप उसके साथ मीठा बोल सकते हैं है? ये है दुआएं लेना। हमें दुआएं लेनी है तो हम अच्छे के साथ अच्छा तो सभी चलते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ अच्छा नहीं चलता है, लेकिन कोई हमें दुआएं नहीं देता है, लेकिन वो कुछ भी बोलता है, लेकिन मुझे अगर मैं प्यार से बोलती हूँ, मैं प्यार से देखती हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा बच्चे कोई आपको कुछ भी दे लेकिन आपको तो दुआ ही देनी है। कोई समझो क्रोध कर रहा है तो आप कैसे दुआएं देंगे, कैसे देंगे भाई, उसको देखकर सोचो ये बहुत बाबा का मीठा बच्चा है, जितना आप सोचोगे ना बहुत मीठी आत्मा है, इसके ओरिजिनल संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, ये भी शांत है, ये भी पवित्र है, पर इसको याद नहीं है या इसको उसका अनुभव नहीं है, लेकिन है ये भी बहुत अच्छी आत्मा। तो जितना हमारा आपस में व्यवहार बहुत सुंदर होगा उतना ही हम एक दूसरे को दुआएं दे सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि आप देखो प्रकृति के जो तत्व हैं, जो भी प्रकृति के तत्व पांचों हैं, वो देने वाले हैं। आप देखो सूर्य कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं प्रकाश नहीं दूंगा है? ये तो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा देता ही है। कोई को भी देखो आप, चाहे आप आम के पेड़ को पत्थर भी मारो तो भी क्या देगा, तो भी पत्थर देगा, तो भी वो सॉरी आम ही देगा। तो आप देखेंगे जो भी तत्व हैं ये सदा देने वाले हैं। ये कभी भी ये नहीं कहते हैं कि सामने वाला देगा तो ही मैं ये सामने वाला तो ऐसा है मैं तो इसको फल नहीं दूंगा, नहीं, वो फल देने का काम कर ही रहा है, सूर्य अपना काम कर ही रहा है। तो हर तत्व अपना अपना कार्य कर ही रहे हैं देने का। तो दुआएं लेने के लिए हम कुछ बातें अपने जीवन में ध्यान में रखें, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी। उससे पहले आप देखेंगे जो भी बातें आपने सुनी, हमेशा अगर हमें दुआएं लेनी है, हम कई बार बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे होते हैं तो हमारे अंदर कौन सी भावना आ जाती है कि हम तो इतने पुराने हो गए तो भी कोई पूछता ही नहीं हमें है? या कोई हमें कोई वो देता ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता है। तो सबसे अच्छा काम ये है जब भी मन में बात आती है तो क्या करें, आप दूसरों को इतना रिस्पेक्ट दो कि ऑटोमेटिक ही मिलेगा आपको, क्योंकि जो चीज आप देंगे वो आपके पास लौट कर आएगी। आएगी या नहीं आएगी, भाई दुआ कह दो चाहे पुण्य कह दो, एक ही बात। तो दुआ कहें पुण्य कहें, ये हमारा ब्राह्मण जीवन, ये वास्तव में अभी जो हमारा जीवन है ब्राह्मण जीवन चल ही पुण्य के आधार पर रहा। अगर पुण्य नहीं है, दुनिया में भी कहते हैं कि पुण्य ऐसी चीज है, दुआएं ऐसी चीज है जो मरे को भी जिंदा कर सकती है और बददुआएं जिंदे को भी मार सकती है, ये कहावत है। तो वास्तव में दुआएं कहें पुण्य कहें, जितना हम जो चीज हम देंगे वो हमें मिलेगी मिलेगी। आप इसमें मत जाओ कि ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, आपको क्या चाहिए। कोई आपसे मीठा नहीं बोलता है तो आप क्या करो, मीठा बोलो, खूब बोलो हर एक के साथ, तो ऑटोमेटिक जो आप दे रहे हैं वो आपके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि जो हम देंगे वो लौट कर आता है। और पुण्य ऐसी चीज है जो हमारी जमा होती जाती है दुआएं, और समय आने पर वो हमें बहुत काम देती है। कई बार आप देखेंगे आप इतना योग भी नहीं कर रहे होते हैं, आपका पुरुषार्थ इतना अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी आपके कई काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये बड़ा सहजता से हो गया है, तो ये कैसे हुआ। कहीं ना कहीं आपने सेवा की है, आपने सेवा का पुण्य जमा किया हुआ है, आपने कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखा है उसका पुण्य आपके पास जमा है, तो वो जो जमा है वो आपके काम में आता है और आपको लगता है बड़ा सहज हो गया है। तो सहज किसने करवाया, किसने करवाया, दुआओं ने, पुण्य ने, जो आपका जमा था। कई बार हम सेवा करते हैं लेकिन ये सुनने की इच्छा हो जाती है कि देखो किसी ने बोला ही नहीं आपने तो बहुत ही अच्छी सेवा की है। तो बताओ आप एक बार बताओ कि बाबा कई बार कहते हैं बच्चे या तो आप फल खा लो पकने ही मत दो, और या आप उस फल को डिपॉजिट कर लो उसको पकने दो, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कच्चा फल खा ले या उसको उसको पकने दे। तो हम उसको जमा होने दें। अगर कोई ने आपकी महिमा कर दी और ये सब कर दिया तो उसी समय खत्म हो जाता। और फिर जो हम कहते हैं कि पुण्य या दुआएं आई वेला में काम आते हैं, वो तभी काम आते हैं जब हमारे अंदर जमा रहता है। तो हम कोई भी सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें तुरंत रिटर्न लेने का बहुत जल्दी रहता है। हमें रिटर्न नहीं लेना है, लेकिन हमें देखना है कि बाबा को मालूम है। जितना हम बाबा के हवाले कर देते हैं कि बाबा आपने, दूसरी बात जितना हम निमित्त भाव अपने अंदर पैदा करते हैं कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है, करण करावन हार वो है, करण हार मैं, उतना क्या होगा, दुआएं मिलेंगी, उतना ही हमारा पुण्य जमा होगा। आप देखो बाबा ने दादियों को क्या कहा था, आप बड़ी दादी को हम प्रकाशमणि दादी जी जब बाबा के आगे थे, तो बाबा पहले तो क्योंकि बातचीत होती थी सामने, और तब बाबा उनको कह रहे थे देखो दादियों का तो मैं और मेरा किसमें समा गया, बाबा में समा गया। इसे बड़ी दादी को मैंने देखा, जब भी वो बोलते थे तो कभी भी नहीं कहते थे मैं ये कहती हूँ, हमेशा दादी कहती थी दादी ये कहती है, दादी ये चाहती है कि अपन ऐसा करें, कभी भी मैं नहीं बोलती थी। तो बाबा ने उनको क्या कहा कि दादियों का तो मैं और मेरापन सब समा गया, किसमें समा गया है, बाबा में। बाबा कराता है, बाबा चलाता है, बाबा, आप देखो दादियों के हर शब्द में, हर शब्द में हमें तो याद दिलाना पड़ता है कि अरे बाबा करा रहा है, यानी याद दिलाना पड़ता है, और दादियों का मैं और मेरा सारा बाबा में सब, बाबा कराता है, बाबा चला रहा है, कितना बाबा बाबा बाबा। तो जितना हम बाबा बाबा करते हैं उतनी दुआएं, उतना पुण्य हमारे पास जमा होता जाता है, निमित्त भाव हमारे अंदर। एक बहुत सुंदर रहीम का दुआ है, कोई राजा की एक वो है, राजा का नाम ध्यान नहीं है, तो एक बार जब वो दे रहे थे, बहुत दान करते थे, तो जब वो दान दे रहे थे तो उनके नैन नीचे थे और वो देते जा रहे थे, तो सामने से जब वो देख रहा था उनका जो राजा का जो अनुचर था, वो देख रहा था राजा को बड़े ध्यान से, तो उसने राजा को बोला, ये दुआ है रहीम का, कि ऐसी देनी देन कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंचा करे त्यो त्यो नीचे नैन। कि ऐसी देनी राजन, आपने कहां से सीखी है, जो आप देते जैसे जैसे आपके हाथ देने पर उठते जाते हैं और आपके नैन नीचे होते चले जाते हैं। तब उनका राजा का जवाब था कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देत जो दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे, और लोग भरम मेरे पर कर रहे हैं, और जो देते दिन रैन, कि लोग मेरे ऊपर भरम करें कि मैं दे रहा हूं, लेकिन दे कौन रहा है, दे वो दे रहा है, लोग भरम मुझ पर करे और दे वो रहा है। तो वही वाली बात है कि बाबा इतना हमें देता है, इतना हमसे करवाता है कि अहो भाग्य हमारे, अगर बाबा के सेवा में मैं इंस्ट्रूमेंट हूं बाबा का, और बाबा जितना मुझे यूज करता है उतना ही मेरा पुण्य जमा होता है, उतना ही मेरा भाग्य बनता है। आप देखो कई लोग अपनी क्वालिटी को इसलिए छिपा लेते हैं कि कहीं बार बार मुझे ही सेवा ना दे दे, या नहीं कई बार हम कहते हैं भाई मुझे बनाना आता है, तो फिर सोचते अरे नहीं बताओ, नहीं तो बार बार कहेंगे आप ही बनाओ आओ, होता है ना ऐसा, कईयों के मन में आता है कि अरे फिर बार बार ये मुझे ही कहेंगे, लेकिन नहीं, मेरी विशेषताएं, मेरे गुण, ये किसका प्रसाद है, ये प्रभु प्रसाद है। बाबा ने कहा हुआ है कि भगवान ने मेरे अंदर गुण भरे हैं, भगवान ने मेरे अंदर विशेषताएं भरी है, तो ये भगवान ने भरी है, तो अहो सौभाग्य मेरा जो मेरी विशेषताएं, मेरे गुण सेवा में लग जाएं, ये तन, ये मन, ये धन जितना मेरा सेवा में लगेगा उतना ही मेरा भाग्य बढ़ता चला जाएगा, और मेरे पास भगवान की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं, सबकी दुआएं मेरे पास आ जाएंगी, और दुआओं के कारण मेरी दवाइयां भी कम हो जाएगी। कई बार आप देखो हमारा जो दुनिया में भी कहते हैं कि दुआएं दवाइयों को कम कर दी, हमारी हेल्थ को भी दुआएं ठीक रखती है, इसे कई बार डॉक्टर भी कहते हैं भगवान से दुआ करो आप, इसका मतलब दुआएं जो है वो हमें उन चीजों से निकाल देती है। इसलिए अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को हमें कार्य में लगाना है, लेकिन लगाते हुए कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे कोई कुछ दे, ये हमेशा ध्यान रखना है, तब जमा होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं लेकिन क्या हो, रिटर्न में हमें कोई कुछ नहीं कहता है, जिसको अपन अपने शब्दों में कई बार क्या कहते हैं कि मैं तो कितना भी कर लूं जैसी नहीं है मेरे को। कई बार माताएं बहने कहती है बहन जी हम कितना भी कर ले लेकिन कोई जस नहीं है, कोई नहीं मानता कि हम इतना करते हैं। अच्छा है, जस देने वाला कौन है? कौन है? बाबा देने वाला। तो ये नहीं सोचो कि जस नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कोई हमारी महिमा करेगा, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको आपके सामने कुछ बोलेगा, लेकिन पीछे से अगर आपके लिए कहते हैं कि भाई फलाना तो बहुत ही सेवा करता है, बहुत ही अच्छा है, तो ये आपकी गुप्त दुआएं पुण्य जमा हो गया। और ये जो पुण्य है ये बहुत काम करता है। मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाती हूँ कि पहले मैं क्योंकि गांव में सेवा करती है, तो ऐसे तो हम जयपुर में ही है अभी, पर शुरू शुरू में तो जगह जगह हम सेवा करते हैं। तो मैं कोई गांव था जिसमें मैं सेवा के लिए जा रही थी बस में, रोज बस में ही जाना होता था। और जब बस में जाते हैं तो गांव का आपको पता है ना रास्ता कैसा होता है। अभी तो फिर भी ठीक है, आज से मैं समझती हूँ 25 साल हो गए उस बातों को। तो वहां जो रास्ता था खाली मिट्टी मिट्टी मिट्टी, और मिट्टी में जब बस चलती है तो बहुत वैसे उछाती है। तो चलते चलते एकदम मैं ज्ञानामृत पढ़ रही थी बस में, क्योंकि कुछ ना कुछ ले जाती थी ताकि मैं पढ़ते हुए जाऊं, बाबा को याद करते जाऊं, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है। तो मैं ज्ञानामृत पढ़ रही थी और अचानक से सब हल्ला मचाने लगे, मैं तो पता नहीं क्या हो गया। तो जब मैंने खिड़की से नीचे देखा तो वास्तव में अजीब सा ही, क्योंकि वो मिट्टी थी और आगे खाई जैसा था, तो वो मिट्टी और खाई दोनों वो बस यूं खड़ी हो गई जाकर के। वो नीचे जाने वाली थी पर वो मिट्टी के कारण ऐसे कैसे, अब ना तो आप उतर सकते और ना आप कुछ कर सकते। अब वो सारे कोई कहे हनुमान जी को याद करो, क्योंकि वो तो सारे वैसे लोग बैठे थे ना, वो कहे एक तो हनुमान जी को याद करो, वो कहे राम राम करो, सारे जने बैठ करके। मैं बाबा को याद कर रही थी कि बाबा अब आप देख लीजिए, मैं तो आपकी सेवा पर जा रही हूँ और आपकी सेवा करने के लिए अब आप देखो कि इस बस को निकलवाना कैसे। कोई मतलब लगी नहीं रहा था कि कौन तो उतरे और कैसे उतरेगा, क्योंकि पहिए से अगर मिट्टी हटाते हैं तो वो नीचे जाती है। बड़ा अजीब सा ही सीन था। मैं बाबा, लेकिन एक बात है, मेरे अंदर जरा भी हलचल नहीं, जरा भी नहीं, एकदम निश्चिंत कि जैसे बाबा, अपन कहते हैं ना कहावत है कि एक पापी डूबत सारी नाव और एक धर्मी बैठ जाए तो सारी नाव। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बैठी हूं ना बाबा की बच्ची, ये सहज ही निकल जाए। इतना विश्वास के साथ मैं देख रही थी और बाबा को याद कर रही थी। तो अचानक से कुछ बड़े धीरे धीरे कुछ उतरे, बहुत तरीके से उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी को हटाया और ये सब किया, और बड़े उससे जो है वो बस वापस अपने उस पर आ गई। और जैसे वो आ गई सारे, तो कई लोगों ने कहा अरे बहन जी बैठी थी ना, आप ये देखो। तो जो लोग मुझे रोज देखते थे कि बहन जी रोज बस में जाती है, तो कई जो ड्राइवर थे वो जान गए थे। तो उन्होंने फिर तो आपको पता ही है आगे एक मंदिर आया, तो सबने कहा चलो भाई उतरो, कोई हनुमान जी को पैसे चढ़ाओ, सब बच गए ये बच गए। तो कईयों ने फिर बोला अरे भाई हमारी गाड़ी में बहन जी बैठी हुई थी तो हमारी गाड़ी, मतलब आप ये देखो, उनको ये लग रहा था कि हम बाबा के बच्चे, हम दुआओं से पलने वाले। हम बाबा के बच्चे कौन है? दुआओं से। बाबा की दुआएं हर घड़ी हमारे साथ है, तो वो जो जमा है हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो बताओ बाबा हमारी रक्षा करेगा नहीं करेगा? करता ही करता है। लेकिन हम भी हलचल में ना आए, विश्वास निश्चय बाबा के ऊपर कि बाबा है, लेकिन हम अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहते हैं, बाबा का शुक्रिया करते रहते हैं और उस योग युक्त स्थिति में रहते हैं, तो बाबा अपने आप ही बहुत सहजता से हमें पार कर देता है। पार लगा, जो कहते हैं नैया पार लगाने वाला एक बाबा ही है। तो इसलिए कभी भी आप, हम बाबा के बच्चे जो भी सेवा करते हैं, तो ये जो हमारी सेवा का बल, हमारे अंदर जो पुण्य का बल है, ये हर जगह काम करता है। आप संसार में कहीं भी जाते हैं बाबा हमारे साथ। अगर हम सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि बाबा मेरे साथ है, हर घड़ी बाबा मेरे साथ है, तो ये सब क्या है, ये दुआएं है ना बाबा की, बाबा को साथ रखना ही दुआ है। जो कई बार बाबा कहते बच्चे, बाबा आपको नहीं छोड़ता है लेकिन आप छोड़ देते हो। बताओ कौन छोड़ता है? छोड़ते हैं नहीं। आप देखो भोजन पर भी जब अपन बैठते हैं क्या कहते हैं, आओ बाबा, फिर थोड़ी देर में पता ही नहीं बाबा कहाँ चला गया, है या नहीं? बाबा तो वही रहता है, हम कह रहे बाबा नहीं गया, लेकिन हमारी धारणा है हम भूल जाते हैं बाबा को। इसे हर घड़ी हम बार बार जब बाबा को साथी बनाते हैं, निमित भाव से चलते हैं और करावन हार बाबा है, उतना ही हमारे जीवन में पुण्य जमा होता है, पुण्य का खाता जमा होता है, दुआओं का खाता जमा होता है। मैंने किया नहीं, किसने कराया? बाबा ने कराया। जितना हमारे अंदर ये भावना होगी तो कभी भी ये इच्छा नहीं होगी कि कोई मेरी महिमा करे, कोई मेरे गुणगान करे, कोई मुझे रिटर्न दे, कभी भी इच्छा नहीं होगी। जितना हम इच्छाओं से परे हैं उतना बाबा हमें बहुत कुछ देता है, उतनी हमारे अंदर दुआएं जमा होती जाती है। फिर दुआएं जमा करने का आधार क्षमा भाव। कई बार हमारे साथ किसी ने बहुत गलत किया हुआ होता है, उसका व्यवहार हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, कई बीती हुई बातें ऐसी होती है जो उन्होंने हमारे लिए कभी अच्छा नहीं किया, लेकिन हमें क्या करना है? जितना हम क्षमा करते हैं, क्षमा भाव भी दुआएं कि हे आत्मा कोई बात नहीं है, जो भी कोई हिसाब है पूरा हो, हम उसे क्षमा कर दे। तो जितना हम ये क्षमा भाव अपने अंदर लाते हैं उतनी हमारे अंदर दुआओं का बल जमा होता है। नहीं तो कई बार मन में क्या आ जाता है कि भाई सबके लिए तो मेरे लिए अच्छा ही निकलता पर इसके लिए तो नहीं निकलता, भाई इसे मेरे साथ तो वो किया है जो पता नहीं मेरे अंदर में दुआएं या शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं निकलती ही नहीं, लेकिन नहीं मेरे अंदर ये हो ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा भी कोई होगा हिसाब, प्यार से मैं उस आत्मा को क्षमा कर दूं। तो जितना हम क्षमा भाव रखते हैं उतना ही हमारे अंदर वो बल हमारे अंदर आता जाता है, दुआओं का बल, पुण्य का बल बल्कि हमारे अंदर आता है, और उस आत्मा के अंदर भी हमारे लिए जो है बहुत सारी ऑटोमेटिक अपने आप शुभ भावना जमा होती जाती है, ऑटोमेटिक उसके अंदर परिवर्तन आता है। दूसरों को परिवर्तन करने का आधार ही यही। अगर हम किसी को भी बदलना चाहते हैं तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे आप दुआएं दो, खाली शुभ भावनाएं दो, केवल यही एक उपाय है, क्योंकि जो बोल से नहीं या कर्म से भी नहीं तो उनका सबसे अच्छा उपाय ही है कौन सा, ब्लेसिंग्स, दुआएं देना, शुभ भावना देना, क्षमा भाव रखना, दया भाव रखना, रहम भाव रखना, कृपा दृष्टि रखना, दातापन की दृष्टि रखना। आप देखो आज भी हमारे चित्रों के आगे, हम देवी देवताओं के चित्रों के आगे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप कभी भी देखना, हे कृपालु, हे दयालु, ये बोलते हैं। और तीसरा बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, कि आप मेरे अवगुणों को चित पर मत रखना। माना मैं तो रखूंगा, समझे, मैं तो रख सकता हूं लेकिन आप मत रखना। ये किसको बोल रहे हैं? हमें, यानी क्योंकि हम साधारण आत्मा ही नहीं है, हम ब्राह्मण बच्चे हैं, दुनिया वाले चित पर रख सकते हैं, अज्ञानी लोग चित पर रख सकते हैं, लेकिन हम देवता बनने वाली आत्माएं किसी की भी बुराई को, किसी की भी नेगेटिविटी को, किसी की भी अशुभ भावना या गलत व्यवहार को अपने चित पर नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे चित पर होगा तो जैसे वो आत्मा मेरे सामने आएगी तो मेरा फेस चेंज हो जाएगा, है या नहीं? क्योंकि चित पर तो गया ना, और फिर अंदर अंदर क्या करूं, नहीं नहीं बाबा ने कहा है क्षमा करो, नहीं नहीं बाबा ने कहा है दुआएं दो, करे भी जा रही हूं, लेकिन चेहरे पर वो भाव भी आए जा रहा है। तो चेहरे पर मेरा भाव ना बदले, वो तब नहीं बदलेगा जब मेरे चित्त में भी उसकी बुराई कहें या उसका कुछ ऐसा कर्म कहें मेरे चित्त के अंदर ना हो। कि ठीक है, क्षमा भाव वाला भाव हो तो जब मेरे चित्त पर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में, मेरी कृति में ऑटोमेटिक वो रूहानियत, वो दिव्यता, वो देने का भाव अपने आप आएगा। ऐसे लगेगा मैं निसंकल्प हूं। और जितना ये चीज जब हमारे अंदर होगी तो लगेगा जैसे बहुत हमारे अंदर, जो बाबा चाहता है कि आपके अंदर रॉयल्टी हो, आपके अंदर शुभ भावना देनी नहीं पड़े बच्चे, लेकिन शुभ भावना का स्वरूप ही बन जाओ। दुआएं देनी ना पड़े, दुआएं आपके संस्कारों में ही आ जाए, मेरे संस्कार ही दुआओं वाले बन जाए, है या नहीं? एक होता है नहीं नहीं मुझे दुआएं देनी है, और एक है मेरे संस्कार ही दुआएं वाले, मेरे संस्कारों में वो चीज आ जाए, दुआओं वाली चीज आ जाए, मेरे संस्कार ऐसे। फिर दुआएं लेने का आधार मेरे संस्कार सुखदाई हो, दुखदाई ना हो। ठीक है, हमारा कोई ठीक है, हमसे कई गलतियां होती भी होगी, कुछ बातें होती है, पर ऐसा संस्कार ना हो जो दूसरों के संकल्प मेरे लिए बहुत चले, दूसरे मुझे समझाते ही रहे खाली हमेशा, है? दूसरे मुझे समझाते रहे, दूसरों को मेरी चिंता ही लगी रहे, दूसरे अरे इस भाई या बहन को कोई कुछ बोल ना दे कहीं ये बिगड़ ना जाए। अगर मेरे संस्कारों के कारण किसी को चिंता हो रही है तो आप बताइए हम दुआएं ले सकते हैं? ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? अरे अरे इसको ठीक जगह मिलनी चाहिए, नहीं तो भाई ये तो है, ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा इसको। अगर ऐसी ऐसी बातें अगर हमारे लिए उठती है, एक होता है कि आपने बताया कि ये प्रॉब्लम है तो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे संस्कार ही संतुष्ट नहीं है, मेरे संस्कार हमेशा ही ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हमेशा असंतुष्ट ही मैं रहती हूँ, तो आप बताइए दुआएं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। तो मेरे संस्कार सुखदायी हो, यानी मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहूं। मैं कौन हूँ? मैं संतुष्ट हूँ। तो जो संतुष्ट आत्मा है वो दुआएं बहुत लेती है। जितनी संतुष्टता होगी मेरे अंदर, उतनी मेरे चेहरे पर शांति होगी, उतनी मेरे चेहरे पर गंभीरता होगी, उतना ही मेरे अंदर दातापन का भाव ऑटोमेटिक होगा, उतना ही मेरी दृष्टि में सबके लिए आत्मिक भाव होगा, उतनी ही मेरी दृष्टि के अंदर गुणग्राही दृष्टि होगी, सब में गुण दिखाई देंगे। ये संतुष्टता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा गुण है। इसे बाबा ने कहा हुआ है, संतुष्टता संपन्नता की एक तरह से चाबी है। जितना हम संतुष्ट होंगे उतना हम जल्दी ही संपन्न बन सकते हैं। तो संतुष्टता हमें क्या दिलाती है? दुआएं दिलाती है। और फिर संतुष्टता के साथ फिर हमारे अंदर अगर हमें दुआएं लेनी है, चाहे बड़ों की, चाहे साथ वालों की, चाहे आपके साथ जो भी रहते हैं, चाहे लौकिक परिवार की, तो हम सदा ही युक्ति युक्त रहे। कई बार जो बात जहां नहीं बोलनी चाहिए वहां भी हम बोल देते हैं, जबकि हमें मालूम है यहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो युक्ति युक्त, बाबा कहते हैं योग युक्त और युक्ति युक्त रहो बच्चे। योग युक्त भी बनना है और युक्ति युक्त भी बनना है या नहीं? अब कहां कौन सी बात करनी है वो समझ चाहिए। तो जैसा समय, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा वातावरण, उसके अकॉर्डिंग मुझे बात करनी है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। मुझे मालूम है इस आत्मा को ये बात पसंद नहीं है, जबकि है सत्य, पर चुप रहो उस समय, साइलेंस, शांत। जितना हम शांत रहेंगे उतना युक्ति युक्त रहेंगे। हमें वहां नहीं भूलना है। तो इसलिए जितना हम युक्ति युक्त रहते हैं तो हमें भगवान की दुआएं मिलती है। एक बाबा भी कहता है ना, बच्चे समय देखो, व्यक्ति देखो कि अभी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, है या नहीं। जैसे कई बार होता है ये भी, समझो कोई आत्मा को बहुत परेशानी, बहुत खराब थी वो आत्मा और दिख रहा है बहुत परेशान है, और हम उसके सामने ही बोल रहे हैं अरे ये तो सबके अपने अपने कर्मों का फल है। बताओ सही है क्या ये बात? तो सही है, फल तो है, फल तो है, लेकिन क्या बोलने की आवश्यकता है? है नहीं है ना, पता है, मालूम है, लेकिन नहीं बोलना है, हमें दुआएं ही देनी है, क्योंकि सबको पता है, सब उसको भी पता है उस बात का, लेकिन हम युक्ति युक्त रहे। और उसके लिए जितना हम कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, बाबा ने कहा था ना, स्लोगन दिया था, कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो, ये स्लोगन दिया है। जितना इन तीन बातों पर अटेंशन रहेगा तो युक्ति युक्त अपने आप बन जाएंगे हम। जितना हम शांत रहते हैं उतना ही हम युक्ति युक्त रहते हैं। तो हमारा जो दुआएं लेने का तरीका है, ये युक्ति युक्त वाली बात जो, ये भी हमें दुआएं दिलाती, इसलिए हम हमेशा, फिर जितना हम न्यारे और प्यारे रहते, इधर से इधर कार्य किया मैं और मेरा बाबा, न्यारा और प्यारा। कई बार क्या होता है, हम जब अच्छा कर्म करते तो खड़े होकर के देखते हैं कि देखे मेरे लिए क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, देखे क्या क्या बोलते हैं, सूक्ष्म में इच्छा रहती है कि देखे मेरे लिए कोई अच्छी अच्छी बात सुना रहा है या नहीं सुना रहा है। अभी समझो मैं क्लास करा रही हूँ, मैं जाके कहूँ कि भाई भाई सब अच्छा अच्छा ही बोले, तो ये सुनने की इच्छा जो है, उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे आप क्या करो, इधर किया और मैं और मेरा बाबा, न्यारा और प्यारा। बस जितना हम न्यारा और प्यारा रहते हैं उतना ही हमारे पास दुआएं कहें, पुण्य कहें, शुभ भावनाएं कहें, ऑटोमेटिक मिलती है। सामने वाला कहता है भाई ये आत्मा तो बड़ी न्यारी और प्यारी, सब कुछ करके बाबा के लिए क्या कहते हैं, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, है या नहीं? कहते हैं सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। आप देखो बाबा सब कुछ करता है और फिर कहाँ चला जाएगा, परम धाम, और हमें क्या दे जाएगा, सत्यो कि बच्चे तुम आराम से रहो, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। तो भगवान देखो आप कितना वो रहता है, गुप्त रहता है कितना। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना बच्चे, जबकि भगवान पढ़ा रहा तो भी ढेर नहीं आते है ना मुरली में आज, और वहां देखो कितना ढेर लोग आते हैं। लेकिन भगवान का कार्य बड़ा गुप्त है, भगवान का कार्य बड़ा रॉयल है, भगवान का कार्य बड़ा ऊंचा है। और ऊंची चीज को समझने के लिए भी बाबा के बच्चे जो बाबा ढूंढ ढूंढ के लाते हैं तो बड़ी क्वालिटी के लेकर के आते हैं, ये बच्चे भले दिखने में साधारण है लेकिन आत्मा की क्वालिटी बड़ी ऊंची है या नहीं। वहां दिखते भले अपने आप को वैसे हैं पर क्वालिटी में फर्क है, इसलिए हम बाबा के बच्चे न्यारे और प्यारे। तो हम गुणवान शक्तिवान बनते हैं उतनी हमारे अंदर दुआएं जमा होती है। इसे आप देखो हमारी महिमा में कहते हैं सर्व गुण संपन्न, फिर 16 कला। तो गुण हमें क्या देते, दुआएं दिलवाते। जितना आप गुणवान और जितना गुणों को आप यूज करते हैं उतनी हमें सबकी दुआएं मिलती जाती है, और अनेकों की दुआएं जब मिलती है तो ये ब्राह्मण जीवन हमारे लिए बहुत सहज, बहुत सरल अपने आप हो जाता है, फिर कठिन नहीं लगता है। जो फिर हम सोचते हैं इतनी बातें हैं, ये उन सब बाबा ने कहा हुआ है बातों में नहीं जाओ, लेकिन या तो बाप को देखो और या बातों को देखो। तो किसको देखना है, बाप को देखना है। जितना हम बाप को देखेंगे, जितना जैसे आप देखो कई बार कई ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर आपको कहते हैं तुमको पता नहीं है, बाप कहते नहीं मुझे तो नहीं मालूम है, फिर वो बताने लगते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जितनी फालतू सूचनाएं आपके पास नहीं है उतना ही आपका पुरुषार्थ तेज होगा। फालतू की सूचनाएं, समझ में है? बहुत बढ़िया है। कोई कहता है ये हुआ वो हुआ, देखो उसका ये, जितनी फालतू की बातें आप नहीं सुनेंगे उतनी भगवान की नजर आपके ऊपर रहेगी। जितनी फालतू बातों में जाओगे तो ये सागर है फिर ये। अच्छा फिर क्यों, क्या बाबा कहता है फिर ये सारा चालू हो जाएगा, है या नहीं? जितनी कम सूचनाएं, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं बहुत वैसी थी और कई बार मुझे बहने कहती तुमको पता ही नहीं रहता है कुछ, तो मैंने बड़ों से पूछा कि भाई मुझे पता होना चाहिए, उन्होंने कहा जितना कम पता हो उतना बढ़िया हो, जितना तुम्हें कम पता होगा उतना ही तुम आगे बढ़ोगी और जितना ज्यादा पता होगा उतना पीछे। तो इसलिए जो फालतू बातें कम पता हो बहुत बढ़िया है, बस ये पता हो मैं और मेरा बाबा, वहां जो बाबा ने कहा वहां मेरा बाबा और वहां मेरा भाग्य और वहां मैं आत्मा। आप देखो ये तो हमें याद रहता है नहीं, वो वाली बातें याद रहती है। इसलिए जितना हम वाह 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 करते जाते हैं उतने ही हम क्या बनते जाते हैं, वाह वाह बनते जाते हैं और बाबा की भी दुआएं हमें मिलती जाती है। जितना हम अपने भाग्य का सिमरण करते, बाबा का सिमरण करते, जितना हम ज्ञान का सिमरण करते उतनी ये दुआएं आशीर्वाद खुद की खुद को भी मिलती, ब्राह्मण परिवार की भी मिलती और बाबा की भी दुआएं हमारे साथ रहती। तो सदा जब हम सदा अपने अंदर ये महसूस करें कि बाबा का हाथ हर पल मेरे ऊपर है, बस इतना भी हम करेंगे कि बाबा का हाथ मेरे ऊपर है, आशीर्वाद का हाथ सदा है, तो ना कोई विघ्न, जितना विघ्नों की बातें करते हैं ना उतने विघ्न ज्यादा आते हैं। जैसे दादियां कहते ना मैं तो मालूम ही नहीं था माया क्या होती है, या नहीं? तो जितना इनोसेंट रहते हैं इन बातों से उतना हम सेंट बनते जाते हैं, महान आत्मा बनते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सब सदा आगे बढ़ते रहो, सदा ब्राह्मण जीवन में उड़ते रहो, उड़ाते रहो, यही इस बाबा की दुआएं, हम सबकी दुआएं आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। अभी हम दो मिनट बाबा को याद करके उठेंगे ना।